लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित सेंट पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 21 सितंबर को सेंट पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रेटेली ए सोरेले, बोनजोर्नो। लोडियर्ना पाजिना एवंजेलिका नार्रा ला पारावोला दे लाबोरातोरी chiamati a giornata dal padrone della vigna.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज का सुसमाचार पाठ मजदूरों के दृष्टांत का वर्णन करता है, जिन्हें भूमिधर ने अपनी दागबारी में एक दिन काम करने के लिए बुलाया था। यीशु इस कहानी के द्वारा ईश्वर के कार्य करने के अनोखे तरीके को दिखलाते हैं, जिसको मालिक अपने दो मनोभावों के द्वारा प्रकट करते हैं, बुलावा और उदारता। एक दाग बारी का मालिक 5 बार बाहर निकलता है और मजदूरों को अपने लिए काम करने हेतु बुलाता है, सुबह 6 बजे, 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे। इस मालिक की छवि प्रेरणादायक है, जो अपनी दाग बारी में काम करने के लिए रोजाना मजदूरों को बुलाने के लिए कई बार बाहर जाता है। वह भूमिधर ईश्वर का प्रतीक है, जो अपने राज्य के लिए कार्य करने हेतु सभी को बुलाते और हमेशा किसी भी समय बुलाते हैं। आज भी ईश्वर इसी तरह कार्य करते हैं, वे सभी लोगों को बुलाते हैं और किसी भी समय बुलाते हैं। वे उन्हें अपने राज्य के लिए कार्य करने हेतु बुलाते हैं। यह ईश्वर के कार्य करने का तरीका है, जिसको स्वीकार करने और अनुसरण करने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। वे अपनी दुनिया में बंद नहीं रहते बल्कि बाहर निकलते हैं। हमारी खोज में वे हमेशा बाहर जाते हैं। वे लगातार लोगों को खोजते रहते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई भी उनके प्रेम की योजना से वंचित हो जाए। संत पापा ने कहा कि हमारे समुदायों को भी विभिन्न घेरों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, ताकि सभी लोगों को मुक्ति का संदेश दिया जा सके, जिसको प्रदान करने के लिए यीशु आए। इसका अर्थ है जीवन की क्षितिज के लिए खुला होना, जो उन लोगों को आशा प्रदान करता है जो सुदूर गांव में रहते हैं, जिन्होंने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है अथवा ख्रिस्त से मिलने वाली शक्ति एवं प्रकाश को खो दिया है। कलीसिया ईश्वर के समान ही हमेशा बाहर जाना चाहती है। संत पापा ने कहा,
quando la chiesa non è in uscita si ammala di tanti mali che abbiamo nella chiesa,
कि जब कलीसिया बाहर नहीं जाती है तब वह कलीसिया के अंदर की कई बुराइयों से बीमार हो जाती है। कलीसिया में क्यों इस प्रकार की बीमारियां हैं? क्योंकि वह बाहर नहीं जाती है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो दुर्घटना का खतरा होता है, किंतु कलीसिया के लिए अंदर रहकर बीमार होने की अपेक्षा बेहतर यही है कि वह सुसमाचार सुनाने बाहर निकले। ईश्वर हमेशा बाहर जाते हैं, क्योंकि वे पिता हैं और हमें प्यार करते हैं। कलीसिया को ऐसा ही करना चाहिए, उसे हमेशा बाहर निकलना चाहिए। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी का दूसरा मनोभाव है कि वे मजदूरों को उदारता पूर्वक दान करते हैं। ईश्वर किस तरह उदारता दिखलाते हैं? मालिक ने एक दिनार की मजदूरी निश्चित किया था। पहले मजदूर दल को उन्होंने सुबह काम पर लगाया था, बाद में उन्होंने दूसरे मजदूरों को भी लगाया और उनसे कहा कि जो उचित मजदूरी होगा वे उससे प्रदान करेंगे। दिन के अंत में ताकपारी के मालिक ने आदेश दिया कि सभी मजदूरों को एक ही मजदूरी दी जाए। इससे सुबह में काम करने वाले मजदूर नाराज हो गए और वे मालिक के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, किंतु मालिक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे सभी को अधिकतम मजदूरी देना चाहते हैं, चाहे वह अंत में ही क्यों न आया हो। संत पापा ने कहा,
Sempre Dio paga il massimo।
ईश्वर हमेशा प्रचुरता से प्रदान करते हैं, वे आधा नहीं देते, वे सब कुछ देते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि यीशु काम और उसकी सही मजदूरी के बारे बात नहीं कर रहे हैं, यह दूसरी बात है। वे ईश्वर के राज्य एवं स्वर्गिक पिता की अच्छाई के बारे बात कर रहे हैं, जो निमंत्रण देने के लिए लगातार बाहर निकलते हैं और सभी को अधिकतम मजदूरी प्रदान करते हैं। वास्तव में ईश्वर इसी तरह व्यवहार करते हैं, वे समय और परिणाम नहीं देखते बल्कि तत्परता देखते हैं। वे हमारी उदारता देखते हैं जिसके साथ हम अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। उनके कार्य करने के तरीके न्याय से बढ़कर हैं और यह कृपा में प्रकट होता है। सब कुछ कृपा है, हमारी मुक्ति एक कृपा है, हमारी पौत्रता भी एक कृपा है। कृपा प्रदान करने के द्वारा वे हमें हमारी योग्यता से अधिक प्रदान करते हैं, और इसलिए जो लोग मानवीय तर्क का उपयोग करते हैं, अर्थात किसी की महानता के माध्यम से अर्जित गुणों के तर्क में पहले होने के बदले वे खुद को अंत में पाते हैं, तब वे कहते हैं, परंतु मैंने बहुत काम किया, कलीसिया को बहुत योगदान दिया और दूसरों की काफी मदद की है, किंतु मुझे भी इस व्यक्ति की तरह देखा जा रहा है जो अंत में आया है। संत पापा ने कहा, हम याद करें कि कलीसिया में सबसे पहले कौन संत बना। भला डाकू, उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया। यही कृपा है, ईश्वर ऐसा ही करते हैं, वे हमारे साथ भी ऐसा करते हैं। जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार तर्क करते हैं वे असफल हो जाते हैं, और जो पिता ईश्वर की करुणा पर भला डाकू के समान अपने आप को दीनता पूर्वक सौंप देते हैं वे अपने आप को पहले स्थान पर पाते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना की कि अति पौत्र माता, हमें ईश्वर द्वारा उनके लिए कार्य करने हेतु बुलाए जाने के आनंद एवं विस्मय को महसूस करने में मदद दे, उनके खेत जो दुनिया है और उनकी दागबारी जो कलीसिया है उसमें काम करने के लिए, और बदले में हम उनका प्रेम एवं यीशु के साथ मित्रता प्राप्त कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae,
concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित किया एवं उन्हें विभिन्न सूचनाएं दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्ट कांग्रेस की तैयारी हेतु प्रोत्साहन देते हुए कहा,
Secondo i programmi fatti prima della pandemia, nei giorni scorsi avrebbe dovuto svolgersi il congresso eucaristico internazionale a Budapest.
महामारी से पहले की योजना अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में बुडापेस्ट में होने वाला था, अतः मैं हंगरी के चरवाहों एवं विश्वासियों तथा सभी का अभिवादन करता हूँ जो बड़े विश्वास एवं आनंद के साथ इस कलीसियाई अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कांग्रेस को अगले साल 5 से 12 सितंबर के लिए बुडापेस्ट में स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यूकारिस्ट में ख्रिस्त के जीवन एवं मिशन के स्रोत को प्राप्त करने की तैयारी की इस यात्रा में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़कर आगे बढ़ें। तत्पश्चात संत पापा ने इटली में पौत्र हृदय के कार्तिक विश्वविद्यालय दिवस की याद करते हुए कहा, मैं प्रोत्साहन देता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था का समर्थन करें जो एक ऐसी परियोजना को निरंतरता एवं नया जोश देने के लिए बुलाया जाता है जो यह जानती है कि युवा लोगों की कई पीढ़ियों के लिए भविष्य के दरवाजे कैसे खोलें। यह और भी महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी के लोगों को मानव प्रतिष्ठा एवं हमारे आम घर की देखभाल करने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद सेंट पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों के तीर्थयात्रियों, परिवारों, पल्ली दलों, संगठनों एवं विश्वासियों का अभिवादन किया। अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में ऑस्ट्रिया ऑटिज्म सेंटर से आए विशेष जरूरतों वाले छोटे बच्चों और उनके माता पिता, सेंटर के निदेशक और अधिकारियों से मुलाकात की। संत पापा ने मिलने की खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मैं यहाँ वाटिकन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके चेहरे को देखकर खुश हूँ और मैंने आपकी आँखों में पढ़ा कि आप भी मेरे साथ कुछ समय बिताने के लिए खुश हैं। संत पापा ने कहा, आपके घर को सनशाइन कहा जाता है, जिसका अर्थ है सूरज की भव्यता। मैं सोच सकता हूँ कि प्रभारियों ने इस नाम को क्यों चुना, क्योंकि आपका घर सूरज की भव्यता में एक शानदार फुलवारी की तरह दिखता है और इस फुलवारी के फूल आप हैं। ईश्वर ने सभी रंगों के फूलों की एक विशाल विविधता के साथ दुनिया का निर्माण किया। प्रत्येक फूल की अपनी सुंदरता है जो अद्वितीय है। हम में से हर कोई ईश्वर की नजरों में सुंदर हैं और वे हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहने की आवश्यकता महसूस होती है। सभी प्राणियों के जीवन उपहार के लिए धन्यवाद, माता पिता के लिए धन्यवाद, अपने परिवारों के लिए धन्यवाद और सनशाइन केंद्र के दोस्तों के लिए भी धन्यवाद। आगे संत पापा ने कहा, ईश्वर को धन्यवाद एक सुंदर प्रार्थना है। ईश्वर को प्रार्थना करने का यह तरीका पसंद है। फिर आप एक छोटा सा सवाल भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्यारे येसु, क्या आप माता पिताजी के कामों में मदद कर सकते हैं? क्या आप दादी को कुछ आराम दे सकते हैं जो बीमार है? या प्यारे येसु, कृपया संत पापा को कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए मदद करें। यदि आप विश्वास से मांगते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु आपकी बात सुनते हैं। संत पापा ने बच्चों के साथ आए माता पिता, ऑटिज्म सेंटर के निदेशक और अधिकारियों को इन छोटे बच्चों के खूबसूरत पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपको सौंपे गए इन छोटों के पक्ष में आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। आपने जो कुछ भी इन में से एक के लिए किया, वह आपने येसु के लिए किया। अंत में संत पापा ने उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और माता मरियम के संरक्षण में उन्हें सुपुर्द किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में महासभा के एक मत के साथ स्थापित किया गया। तब से हर साल 21 सितंबर को 24 घंटे वैश्विक युद्ध विराम की मांग की जाती है और शांति के विषय पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए एक साथ शांति का निर्माण करना शीर्षक चुना गया है। महामारी के वैश्विक खतरे का सामना कर रहे राष्ट्र में लोगों की दया और सहयोग की संस्कृति की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। एक साथ शांति का निर्माण वास्तव में संत इजिदियो समुदाय के विशेष बुलाहट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके कार्य पद्धति से मेल खाता है। एक ऐसा तरीका जो संघर्षों के सम्मान के लिए कई वर्षों से कार्य पर समेकित किया गया है। शांति वास्तव में सार्वभौमिक जिम्मेदारी है और सभी को अपने विचारों और कार्यों के साथ इसमें योगदान देना चाहिए, जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 27 अक्टूबर 1986 को असीसी में शांति के लिए प्रार्थना के दिन कहा था। शांति एक ऐसी इमारत स्थल है जो न केवल विशेषज्ञों, बुद्धिमान पुरुषों और रणनीतिकारों के लिए है, परंतु यह सभी के लिए खुली है। संत इजिदियो समुदाय एक साथ रहने की संस्कृति का निर्माण करने के लिए अपनी दैनिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करता है, जैसे शांति के लिए स्कूल और शांति आंदोलनों के माध्यम से बच्चों और युवाओं की शिक्षा में निवेश करना, राष्ट्रों और धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और शरणार्थियों एवं प्रवासियों के स्वागत के लिए काम करना। उधर संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के प्रमुख ने COVID-19 महामारी के कारण लाखों लोगों को अकाल से बचाने के लिए समर्थन कार्यों को जारी रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है। WFP के कार्यकारी निदेशक डेविड बेसले ने 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि भूखमरी की कगार पर पहुंच गए 270 मिलियन लोगों को आज हमारी मदद की जरूरत है। वायरस और इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों के कारण आपातकाल के लिए सरकारों, दाताओं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की असाधारण प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए बेसले ने चेतावनी दी कि हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं हैं। सुरक्षा परिषद सत्र में भूख और भूखमरी का सामना करने वाले देशों के प्रति ध्यान आकर्षित किया गया। वे देश हैं यमन, प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और बुर्किना फासो। बेसले ने कहा, यमन दुनिया का सबसे खराब मानवीय आपदा है। युद्ध, एक ढह चुकी अर्थव्यवस्था, मुद्रा अवमूल्यन, खाद्य कीमतों में कमी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विनाश का मतलब है कि 20 मिलियन लोग पहले से ही संकट में हैं। अब कोरोना वायरस के कारण 3 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में हिंसा में वृद्धि COVID-19 के साथ मिलकर खाद्य असुरक्षा के स्तर की संख्या को 15.2 मिलियन लोगों से लगभग 22 मिलियन तक बढ़ा दिया है। नाइजीरिया में 80% परिवारों की आय में कमी आई है और पूर्वोत्तर में लगभग 4.3 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। दक्षिण सूडान में महामारी से पहले 6.5 मिलियन लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा की सामना करने की उम्मीद थी। यह वायरस शहरी क्षेत्रों में अन्य 1.6 मिलियन लोगों को भूखमरी के खतरे में डाल दिया है। बुर्किना फासो में भूख के संकट के स्तर का सामना करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़कर 3.3 मिलियन हो गई है। उधर यूरोप में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमणों को रोकने के लिए जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेन की चिंता है कि अधिक संख्या में मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं और मौतें हो सकती हैं। स्पेन सहित कई देशों के अधिकारियों ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राजधानी मैड्रिड के कुछ हिस्सों में COVID-19 में वृद्धि को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।